सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं और यात्रा के दूसरे चरण में 31 अगस्त और 1 सितंबर को वे किर्गिज गणराज्य जाएंगे और बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। क्या है इस यात्रा के विभिन्न पहलू, क्या है उनका महत्व भारत के लिए, किस तरह से ये हमें लाभान्वित करेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार और ताशकंद से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। आप दोनों का, एम्बेसडर सज्जनहार और सुशील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
जी बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए।
सुशील जी, आप ताशकंद में अभी हैं, हमें बताएं कि किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह का उत्साह है और वहाँ पर किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा जो वो उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं।
जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह तो जबरदस्त है क्योंकि उज्बेकिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं और उनमें भी लगभग एक मेजॉरिटी, आप कहें कि मोस्टली जो है वो छात्र हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, जेंजी हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। 2 दिनों से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित है, छात्र, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोग, तो भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित है, लेकिन साथ के साथ उज्बेकी समुदाय भी काफी उत्साहित है। यहाँ के लोग भारतीयों से एक तरीके से कहें तो बेहद ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, भारतीयों से एक अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो कि सदियों पुराना है। सिल्क रूट की वजह से भी पहले के जमाने में लोगों का आना जाना बहुत होता था और बॉलीवुड फिल्मों, बॉलीवुड के गानों, बॉलीवुड के सीरियल्स, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत के सीरियल की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लोकप्रियता रही है। हमने बहुत से लोगों से हिंदी गाने गुनगुनाते हुए सुने और लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के और बैनर्स लगे हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है।
तो आपने तो हमें भी उत्साहित कर दिया। एम्बेसडर सज्जनहार, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और ब्रॉडली पूछूं, मध्य एशिया का भारत के लिए क्या महत्व है, अगर आप संक्षेप में हमें बता सके।
जी बहुत धन्यवाद सोनू जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
जी
आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, ये 4थी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान में और वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 5 देशों की यात्रा कर चुके। 2015 में अगर देखा जाए, 1 साल के बिल्कुल बाद जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहला देश जो वो गए थे वो 2015 जुलाई में उज्बेकिस्तान था, उसके बाद कजाकिस्तान और फिर 3 और देशों में भी। तो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सुशील जी ने अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, जो वहां पर हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। अगर देखा जाए सम्राट अशोक के समय से ये पूरा जो मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है, ये सम्राट अशोक के राज्य में ये मिलता था। और अगर देखें तो यहाँ से सिल्क रोड का न केवल जिसे कहा जाए गुड्स, बट आइडियाज, फिलोसफी, थॉट और बुद्धिज्म भी यहाँ से ही निकलकर चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा। परंतु जब से आजादी मिली है इनको सोवियत संघ से 1991 में, तब से हमारे जो संबंध हैं इतनी तेजी से आगे नहीं उभर पाए हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसे हम कहा जाए कनेक्टिविटी, जिसे हम कहें जो हमारे इनसे लैंड बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं।
जी
जो ये सब देश जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इन देशों की जो है, इससे पहले भी इन देशों की शक्ति बढ़ती जा रही है और इन्होंने, ये 5 देशों ने पहली बार 2018 से कहा जाए अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना शुरू किया है। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये निर्भर थे चीन पर और रूस पर, अब वो चाहते हैं जो और देशों के साथ भी इनके जो संबंध हैं और भी सुदृढ़, और इसमें भारत चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे अपने आर्थिक व्यवस्था के लिए, यहाँ पर इन देशों के पास तेल, गैस, यूरेनियम और जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थों का बहुत ही बड़ा भंडार है, तो वो हम इनको इनसे कैसे ले सकते हैं। और हमारी जो शक्ति है, चाहे ट्रेड हो, निवेश हो, फिनटेक हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन एनर्जी हो, इन सब क्षेत्रों में हम इनमें कैसे, इनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। क्योंकि ये देश भी चाहते हैं जो अपने दायरे से बाहर निकलकर और देशों के साथ सहयोग को आगे ले जाए।
एम्बेसडर सज्जनहार, प्रधानमंत्री ने जब वो जा रहे थे उससे पहले कहा कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ वे व्यापार और निवेश, जैसे आपने कहा डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। तो किस तरह के आपको लगता है कि आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह के विषयों या कहें कि क्षेत्रों में समझौते जमीनी तौर पर होने की उम्मीद है आपको?
देखिए सोनू जी, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो है बायलैटरल रिश्ते, द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर तीन बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान में हमने इस्टेब्लिश की है। एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है। इसमें फरगना वैली अंदिजान के क्षेत्र में, जहां से आपके सुनने वालों को याद होगा, जहां से बाबर यहां पर भारत में आया था 1526 में, उसी क्षेत्र में हमने शारदा यूनिवर्सिटी का एक एस्टेब्लिशमेंट किया है। उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी संभ्राम यूनिवर्सिटी, वो भी वहां पर एस्टेब्लिश की गई है। तो एक तो जो द्विपक्षीय संबंध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं। दूसरा परिपेक्ष सोनू जी है भारत का और मध्य एशिया के देशों का, और इसमें मैं बताना चाहूंगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ली गई थी 2022 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जिसे कहा जाता है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट लेवल पर, मतलब वहां के पांचों देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वर्चुअली एक समिट ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और उसमें ये बात तय की गई थी जो इस समिट का आयोजन किया जाएगा हर साल दो साल के बाद, और 2022 के बाद अभी तक बहुत कारणों की वजह से ये अभी तक दूसरा समिट, दूसरा शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं जो अगर अपने संबंधों को हमने और आगे गति देनी है, तेजी लानी है, इस शिखर सम्मेलन को हमें आयोजित आगे जल्दी करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी शौकत मिर्जायेव से ताशकंद में और नेताओं से बिश्केक में, जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर 26वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो हमको ये द्वितीय शिखर सम्मेलन को भारत में आयोजित करने में इसको और गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, और वो हमारे रिश्तों को एक नए सतह पर, एक नए लिमिट की तरफ और लेकर जा सकते।
बिल्कुल सुशील जी, अगर आपके पास आए, इससे पहले कि हम बिश्केक में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो होने वाला है समिट, उस पे बात करें, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें समझौते हो सकते हैं जो भारत को भी लाभान्वित करेंगे और उज्बेकिस्तान को भी लाभान्वित करेंगे?
देखिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, हमारी यहाँ की जो एम्बेसडर हैं स्मिता पंत जी से भी बात हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उज्बेकिस्तान है वो मिनरल रिच कंट्री है, तो रेयर अर्थ जो कि आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है और जिसकी बहुत दुनिया में मांग है, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, और उसको लेकर के कोई समझौते की गुंजाइश हो सकता है कि बन भी सकती है, उस पर बातचीत होगी, ऐसा एम्बेसडर महोदया ने भी कहा। और दूसरी चीज है रक्षा में बहुत सहयोग है दोनों देशों के बीच में, डस्ट क्लिक करके उनका आपस में एक साझा संयुक्त सैनिक अभ्यास भी होता है। भारत के पूर्व रक्षा प्रमुख मनोज पांडे भी, जो थल सेना प्रमुख थे, वो भी यहाँ आ चुके, तो दोनों देशों के बीच रक्षा है। एक महत्वपूर्ण निवेश का क्षेत्र और व्यापार का क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर के भी जो है वो कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ईरान से पहले सामान यहाँ पर लोग मंगाते थे और अब वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है ईरान युद्ध के बाद से, तो चीन के रास्ते माल आता है तो वो महंगा पड़ता है। हमारी स्थानीय व्यापारिक समुदाय के लोगों से ही बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है मेडिकल का, फार्मा का। यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी, कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहीं पर अपने हॉस्पिटल्स और फार्मा सेक्टर के जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की, तो वो भी एक बड़ा सेक्टर है। पर्सन टू पर्सन जो बड़ी संख्या में लड़के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक बड़ी आबादी जो यहाँ रहने वाले भारतीयों की है उसमें लगभग 80 से 90% तो सिर्फ छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमारी बहुत से छात्रों से बातचीत हुई तो उन्हें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके आने जाने को लेकर के, उनके प्रोफेशन को लेकर के हो सकता है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें निकल करके आए।
और इसके बाद का जो सेकेंड लेग है इस यात्रा का प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो किर्गिज गणराज्य जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने, उसके समिट में, आप हमें बताएं एम्बेसडर सज्जन हार की जो उन्होंने विजन दिया है भारत का, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी, SCO, सिक्योरिटी कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी, इसको आप कितना कहें कि एक सटीक, एक उम्मीद की किरण मानते हैं? हर एक पहलू पे आप किस तरह से आपसी सहयोग आंकते हैं, आगे के क्या पोटेंशियल है?
जी देखिए, मेरे विचार से संभावनाएं तो बहुत हैं इसमें, परंतु इसको ये भी देखा जाए जो इसमें लिमिटेशंस भी हैं। भारत ने इसके दो सबसे महत्वपूर्ण उच्च श्रेणी के ये शिखर सम्मेलन होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि ये सब जो देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सबके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। तो हमने, भारत ने शिखर सम्मेलन किया था प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर 2020 में, और सबसे उच्च स्तर पर, उच्च श्रेणी का जो शिखर सम्मेलन होता है वो हेड ऑफ स्टेट का होता है, जो कि 2023 में हमने उसकी अध्यक्षता की थी, और उसमें हमने बहुत से वो लिए थे, नए इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि बुद्धिज्म के ऊपर, जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, जैसे मिलेट्स को, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हम कहें एग्रीकल्चर में फूड स्केयरसिटी, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत हमने अच्छे इसमें इनिशिएटिव्स लिए। तो मैं समझता हूँ संभावना इसमें बहुत है। सिक्योरिटी अच्छी बात है, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश ही इसीलिए किया गया था, जो ये वाला सभी जो क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, जो कैसे ये देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात है कनेक्टिविटी, और उसमें हम कहते रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जो पाकिस्तान के थ्रू तो हम नहीं आ सकते, तो हमने चाबहार के ऊपर बहुत अधिक जोर देना शुरू किया था, और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, परंतु जब से ईरान के ऊपर इतनी अंकुश लगे हैं, इतने सैंक्शन आए हैं, तो उसको हम आगे ठीक तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। परंतु कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सोनू जी, और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश इनमें बहुत रुचि रखते हैं, जो INSTC और चाबहार को आगे हम और ज्यादा प्रगति की ओर ले जा सकें। तो काफी, अगर नॉमिनल टर्म में देखा जाए तो हमारी करीब 30% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था है, तो ये अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये बहुत ही अच्छा इनमें सहयोग की संभावनाएं हैं, और मैं समझता हूं जो बातचीत होगी उसमें इन सभी सहयोग के पहलुओं को हम आगे ले जाने में सक्षम होंगे।
एम्बेसडर सज्जन हार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील चंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जन हार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में